प्रस्तुत है आज का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। एंथनी एल्बनीजी अपने तय समय के अनुसार अब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिलेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 में शानदार दिन बिताया, लेकिन वे तय समय से पहले ही चले जाएंगे, यानी कि आज रात विश्व नेताओं के साथ डिनर करने के ठीक बाद। इससे पहले एल्बनीजी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित मंत्री ली जे मियांग से मुलाकात की। एल्बनीजी ने अपने ब्रिटिश समकक्षों की टिप्पणियों का स्वागत किया है कि यूके ऑकस सौदे के साथ आगे बढ़ने के लिए दृढ़ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यूके ने लेबर सरकार की पिछले साल प्रतिक्रिया के तौर पर ऑकस की समीक्षा की थी और इस समझौते से स्पष्ट लाभ सामने आते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि एयरलाइन विकल्प उपलब्ध होने के बाद इसराइल और ईरान से ऑस्ट्रेलियाई लोगों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि अब तक इसराइल में लगभग 300 ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने देश छोड़ने में अपनी रुचि दर्ज कराई है और अन्य 350 लोग ईरान छोड़ने में मदद चाहते हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में हवाई हमले चौथे दिन भी जारी रहे। जब तेहरान में इमारतों पर इजरायली हमला हुआ तो ईरान के सरकारी प्रसारक का प्रसारण कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। वहीं नियोक्ता संगठन ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री ग्रुप का कहना है कि मॉडर्न अवार्ड्स के तहत वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने की व्यवस्था पर फेयर वर्क कमीशन द्वारा की गई समीक्षा में उनके योगदान में कुछ भी गलत या अप्रिय नहीं है। सितंबर 2023 में सरकार ने 2.2 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई वर्कर्स के लिए इस फ्रेमवर्क की समीक्षा का आदेश दिया था। इस समीक्षा में विचाराधीन विकल्पों में से एक ये है कि क्या क्लर्क्स अवार्ड के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम का अधिकार शामिल होना चाहिए या नहीं। वहीं मेलबर्न के आसपास सभी सार्वजनिक आवास टावर्स को ध्वस्त करने और उनके पुनर्विकास करने की विक्टोरियन सरकार की योजना पर कानूनी कार्रवाई अब भी जारी है। सरकार का कहना है कि 1960 और 70 के दशक में बनी इमारतें अब उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है और उन्हें बदलने की तुलना में उनके रखरखाव और उन्नयन में अधिक लागत लगती है। हालांकि इन पुनर्निर्माण योजनाओं से निजी किरायेदारों या मालिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे कि सार्वजनिक आवास के विकल्प कम हो जाएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी सैंटोस के शेयरों में 11% की वृद्धि हुई है। ऐसा तब हुआ जब इस कंपनी को अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के नेतृत्व वाले एक ग्रुप से 36 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का अधिग्रहण प्रस्ताव मिला। सैंटोस के बोर्ड ने इस सौदे के लिए समर्थन का संकेत दिया है, लेकिन इसे अभी भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई सरकार, फेडरल कोषाध्यक्ष और विदेश निवेश समीक्षा बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है। वहीं तस्मानिया पुलिस ने राज्य के उत्तर पश्चिम में अपने एक पुलिस अधिकारी की हत्या को दुखद और विनाशकारी घटना बताया है। 57 वर्षीय कांस्टेबल को कथित अपराधी ने उस समय गोली मार दी थी जब वे नियमित ड्यूटी पर नॉर्थ मॉर्टन के एक घर के पास जा रहा था। इसके बाद एक अन्य पुलिस अधिकारी ने संदिग्ध पर अपनी बंदूक तान दी, जिसके बाद अपराधी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बात करें भारत की तो सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी की खबर सामने आई है। इस घटना के चलते यात्रियों को आज सुबह कोलकाता एयरपोर्ट पर प्लेन से उतार दिया गया। फ्लाइट नंबर AI180 कोलकाता होते हुए मुंबई जा रही थी। ये विमान 17 जून को रात करीब 1:45 बजे कोलकाता पहुंचा था और इसे मुंबई के लिए रात 2 बजे रवाना होना था। विमान के बाएं इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण टेक ऑफ में देरी हुई। इसके बाद सुबह करीब 5:30 बजे कैप्टन ने यात्रियों से कहा कि वे प्लेन से नीचे उतर जाएं। उन्होंने बताया कि ये फैसला फ्लाइट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।